जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे भक्त
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम।
ஸ்வாமி ஜய ஜகதீஸ ஹரே பக்த ஜனோகே சங்கட நாச ஜனோகே சங்கட சர மே தூர கரே ஓம் ஜய ஜகதீஸ ஹரே
ஓம் யக்னே நாயக்ஞ மாய பூர்வே சாத்யாஹ சந்தி தேவாஹ ஓம் ராஜாதி ராஜாய ப்ரதயதாயனே நமோ வயம் வேஷ்மனாய குர்மஹே சமே காமான காம காமாய மய்யம் காமேஸ்வரோ வேஷ்மனோ ததாது குபீராய வேஷ்மனாய மஹாராஜாய நமஹ ஓம் ஸ்வஸ்தி சாம்ராஜ்யம் பௌஜ்யம் ஸ்வராஜ்யம் வைராஜ்யம் பரமேஷ்யம் ராஜ்யம் மஹாராஜ்யமாதிபத்யமயம் சமந்த பரியாயே ஸ்யாத் சார்வபௌம சார்வாயுஷ அஹந்தாதாத் பரார்த்தாத் பிருத்வ்யை சமுத்ர பர்யந்தாய ஏகராளிதி ததப்யேஷ ஸ்லோகோ விகீதோ மருதஃ பரிவேஷ்டாரோ மருதஸ்ய வஸந்தே ஆவிக்ஷிதஸ்ய காம ப்ரேர் விஸ்வே தேவா சபாஸத இதி ஓம் விஸ்வதஸ்ய சக்ஷுர்வ விஸ்வதோ மோ விஸ்வதோ பாஹ்ருத விஸ்வதஸ்பாத் சம்பாஹுப்யாம் தமதி சம்பதத்ரேர் யாவா பூமே ஜனயன் தேவ ஏக
சேவந்தி காவகுல சம்பக பாடலாப்ஜே புன்னாக ஜாதி கர்வீர ரசால புஷ்பே
வில்வ பிரபால துளசி தலமஞ்சரி
பூஜயாமி ஜகதீஸ்வர மே பிரசேர ஓம் சாங்காய பரிவாராய சாயுதாய சக்திகாய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நம யதாலப்தோபசார மந்திர புஷ்பாஞ்சலிம் சமர்ப்பயாமி புல்சியாவர ராமச்சந்திர கீ ஜய மோர் முகட வன்சி வாலே கீ ஜய போலி ஸ்ரீமத் பாகவத் மகாபுராண கீ ஜய போலி வேத வியாசி மகாராஜ கீ ஜய போலி ஸ்ரீ சுகதேவஜி மகாராஜ கீ ஜய போலி ஸ்ரீ பரீட்சித் ஜி மகாராஜ கீ ஜய
Thank you. भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्द
ఉద్దిపోతం. వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. త్యక్త్వా సుదుస్త్యజసురేప్సితరాజ్యలక్ష్మీ ధర్మిష్ఠ ఆర్యవత్స యదగాదరణ్యం. మాయా మృగం దైతయేప్సితమన్వదావ వందే మహాపురుషతే చరణారవిందం. కస్తూరీ తిలకం లలాటపటలే వక్షస్థలే కౌస్తుభం. నాసాగ్రేవరమౌక్తికం కరతలే వేణూ కరే కంకణం. సర్వాంగే హరిచందనం సులలితం, కంఠే చ ముక్తావళి గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడమణి. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. యోస్యోత్ప్రేక్షకవాదిమధ్య నిధనే యో వ్యక్తజీవేశ్వరో యః సృష్ట్వేదమను ప్రవిశ్య ఋషిణాం చక్రే పురః శాస్తితః. యం సంపద్య జహత్యజామనుషై సుప్తః కులాయం యథా తం కైవల్య నిరస్తయోనిమభయం ధ్యాయేదజస్రం హరి. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయత్యఖిలశక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాశ్చ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. యం प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि आनन्दधामनिचिदेकरसे द्वितीये तस्मिन् पदेस्तु मम चित्तमगोचरेऽपि यत्सद्व्रजस्थितिजुषाम् सुहृदाम् कुमारादीनामधीनमिव गोचरतामुपैति यावन्निरञ्जनमजम् पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्तरिदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जु अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक सच्चिदानन्द घन्नानन्द कन्द भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम कर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं संत महापुरुषों को सादर प्रणाम कर श्रीमद् भागवत के प्रति अनादि काल से चल रही श्रद्धा को इस कलिकाल में सुरक्षित रखने वाले उपस्थित सभी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं बहनों को अनेक शह अभिनंदन करने के पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा को प्रह्लाद चरित्र के बाद की कथा से कहा जा रहा है। श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव जन कल्याण के लिए हुआ, चाहे उसे पहले ही पहले भगवान ने कहा हो, चाहे उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा हो, चाहे उसको नारद जी ने कहा हो, चाहे व्यास जी ने कहा हो, चाहे सुखदेव जी ने कहा हो, चाहे परीक्षित ने सुना हो, चाहे संकर्षण ने कहा हो, सनत कुमार ने सुना हो, सांख्यायन ने सुना हो, पराशर ने सुना हो, मैत्रेय जी ने सुना हो, और चाहे विदुर जी ने सुना हो, भागवत व्यापक है और भागवत करुणा से कृपा से प्रकट हुआ महापुराण है और केवल लोक हित में लगा रहने वाला है। इस भागवत को सुनते हुए कभी इतिश्री नहीं होती, कहीं भी इतिश्री नहीं होती। कानों से सुनते हैं, परंतु भागवत में गोता लगाने वाला व्यक्ति, भागवत को सुनने वाला व्यक्ति अपने मन ही मन में इसको खूब रमाता रहता है, इसका आस्वादन करता रहता है। जिन किन्हीं को भी भागवत एक बार हाथ में लग गई, उन्होंने इसे छोड़ी नहीं। और भागवत की बात, संतों की बात, भगवान की बात कितनी दुर्लभ है, ये आपको सुखदेव जी महाराज इंद्रप्रस्थ के उस महल से बता रहे हैं कि जहां नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी को सत्संग पूर्वक भागवत सुना रहे हैं। उस महल में एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ नारद जी है, महल में भगवान कृष्ण भी मौजूद है, परंतु हमारे युधिष्ठिर महाराज नारद जी से बातें पूछ रहे हैं। भगवान कृष्ण से बात नहीं पूछते, क्यों? भगवान अपने विषय में विशेषता से नहीं बता सकते। नारद जी हैं जो भगवान के विषय में खुलकर बताते हैं। भगवान के सामने बैठे हुए प्रह्लाद चरित्र सुनाया, नृसिंह भगवान का उपाख्यान सुनाया, हमारे युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्नता में डूबे। भगवान कितने प्रसन्न हुए होंगे भगवान ही जाने, क्योंकि प्रह्लाद चरित्र से भगवान को बहुत आनंद का अनुभव होता है। भगवान बहुत प्रेम से कथा सुन रहे, बीच में नहीं बोले। उनके बीच में अब हमारे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से, इस भावना से प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन में सत्संग मिलना बड़ा मुश्किल है। ध्यान देना, अब जो नारद जी से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करेंगे, उन प्रश्नों का पीछे के प्रसंग से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल अलग है। कोई नृसिंह भगवान से कोई संबंधित प्रश्न नहीं, कोई प्रह्लाद जी से संबंधित नहीं, कोई हिरण्यकश्यप से संबंधित नहीं। जो नारद जी बता रहे थे उनसे संबंध में कोई प्रश्न नहीं है, एक अलग ही प्रश्न है। ये अलग प्रश्न यहां क्यों है? क्योंकि ये भागवत में सातवां स्कंद है, ये वासना स्कंद कहलाता है। जीवों की जैसी वासना होती है, उन वासना के अनुसार उसका शरीर होता है। वासना मयम वपुर नृणाम। हिरण्यकश्यप की कैसी वासना है, जरा आपने सुना ही होगा। बातें तो बड़ी ज्ञान की करता था कि आत्मा नित्य है, अचल है, स्थाणु के समान है, सर्वव्यापक है, सर्वद्रष्टा है, परंतु वो तपस्या करता है विष्णु से बैर करने के लिए। तो आसुरी वासना वाले कितने भी अच्छे से अच्छा काम करें, उनकी वासना आसुरी वासना है, वो वासना नहीं बदलती। देखो, ऊपर से किया हुआ काम हमारे भीतर की वासना को नहीं बदलता। इधर हमारे प्रह्लाद जी महाराज है और भगवान नृसिंह है, इनकी वासना, प्रह्लाद जी की वासना है वो भक्त वासना है, और नृसिंह भगवान की वासना है वो भगवत वासना है। भगवान की वासना कैसी पवित्र होती है, हिरण्यकश्यप का कल्याण किया। प्रहलाद जी की वासना कैसी प्रबल है कि कितना कष्ट झेला पर भगवान की निष्ठा नहीं छोड़ी। और हमारे हिरण्यकश्यप ऐसे निकले कि उन्होंने अपनी वासना की बात से ब्रह्मा जी को ठग लिया। देखो इस सातवें स्कंद में बहुत विचित्र विचित्र बातें मिलती हैं। 15 अध्याय हैं। शुरू के 5 अध्याय में आसुरी वासना है और 6 अध्याय से 10 अध्याय तक भक्त की और भगवान की वासना है। प्रहलाद जी के मन में ये बात है कि जो मुझे ज्ञान मिला हुआ वो सब बालकों को मिले। तो गुरु जी से अवकाश प्राप्त होते ही वे सबको शिक्षा देने लगे और देने नहीं लगे उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि सभी प्रहलाद जैसे भगवान के भक्त हो गए। और जब प्रहलाद जी के मन में ये आया कि भाई मुझे डरा धमका करके भगवान से विमुख करने का एक दुस्साहस कर रहे हैं हमारे पिता हिरण्यकश्यप, तो अविचल रहे, दृढ़ रहे। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, भगवान के भक्त होते हैं वो अपने सिद्धांत में वज्र के समान कठोर होते हैं। और इधर नृसिंह भगवान, उनकी सबसे विचित्र वासना ये थी कि हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर स्वयं बैठ करके और उसको खाली करके प्रहलाद जी को बैठाया। और दूसरी बात है कि भगवान की वासना क्या होती है, जो भक्त की वासना होती है वही भगवान की वासना है। देवता लोग भगवान से खूब प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज इस हिरण्यकश्यप के संकट से हमको मुक्त करो, तो भगवान ने कहा मेरे हाथ की बात नहीं है, जब इसके यहां प्रहलाद का जन्म होगा और उस प्रहलाद के साथ अत्याचार करने से इसका पाप बढ़ेगा तब जाकर के मैं अवतार लूंगा। सब अवतार भगवान अपने संकल्प से लेते हैं, लेकिन नृसिंह भगवान का अवतार है वो भगवान अपने भक्त के संकल्प से लेते हैं। सत्यम विधातुम निर्जभृत्य भाषितम, ये अवतार क्या प्रहलाद जी की वासना से हुआ या हिरण्यकश्यप की वासना से हुआ या भगवान की इच्छा से हुआ, किसकी बात कहे। परंतु हिरण्यकश्यप जो है वो जब प्रहलाद का संग करता है तो उसके मन में एक भावना आती है कि भगवान सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखते। देखो संत संग का फल कितना विचित्र है, कितना आसुरी भाव से ग्रस्त है हिरण्यकश्यप, परंतु जब वो प्रहलाद जी के निकट आया है, प्रहलाद जी ने कहा कि अपने अंदर के शत्रुओं को जीतो, ये ज्ञान की बात आज पहली बार बोल रहे हैं। इससे पहले प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति के विषय में और के विषय में बताया, परंतु हिरण्यकश्यप ने उसके ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। आज हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद के सन्मुख हुआ है। इतने दिन तक प्रहलाद जी स्वयं हिरण्यकश्यप के पास जाते थे, लेकिन पाठशाला में उन बच्चों की स्थिति देखी तो उसके बाद प्रहलाद जी के पास स्वयं हिरण्यकश्यप आए और हिरण्यकश्यप ने ललकारते हुए कहा कि जानते नहीं मैं कौन हूं कि साहब पहले अपने शत्रुओं को जीतो आप। ये प्रहलाद जी के साथ व्यक्तिगत सत्संग हुआ हिरण्यकश्यप का। उसके बाद उसने सीधा प्रश्न किया कि मैं तुम्हें मारता हूं, देखे तुम्हारे भगवान कैसे तुमको बचाते, खंभे में क्यों नहीं दिखते। तो भगवान उस खंभे में से ही प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप की वासना क्या हुई, खंभे में हो तो दिखे, तो हिरण्यकश्यप की वासना क्यों हुई? प्रह्लाद की वासना से हुई। हमको ये शिक्षा देती है ये कथा कि अच्छे महापुरुष के साथ यदि हमारा संबंध हो तो हमारी कैसी भी आसुरी वासना हो, कैसी बुरी वासना, वो वासनाएं पवित्र हो जाती है। और भगवान कैसे दीन दयालु है। प्रह्लाद जी ने कहा कि महाराज एक वरदान चाहता हूं, मेरे पिता ने आपकी बहुत निंदा की, बहुत आपसे बैर विरोध किया, मेरा पिता का कल्याण होना चाहिए। कि 21 पीढ़ी तर गई तेरे पिता की, 21 पीढ़ी है नहीं, अभी 21 पीढ़ी नहीं है। प्रह्लाद प्रह्लाद के हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप हुए कश्यप ऋषि से, कश्यप की संतान थी, दिति के गर्भ से हुए, और कश्यप जी थे मरीचि से पैदा हुए, मरीचि ब्रह्मा जी से हुए, और ब्रह्मा जी भगवान से हुए। कह रही इसकी 21 पीढ़ी तर गई, क्या भगवान की विलक्षण वासना है। इन सब बातों से हमारी युधिष्ठिर महाराज इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि सत्संग के द्वारा कितना बड़ा अज्ञान खुलता है जीव का। जैसे लाखों वर्षों का अंधकार किसी गुफा में हो और एक दिया सलाई करते ही, टॉर्च करते ही वहां तत्क्षण प्रकाश होता है, ऐसे ही जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान सत्संग में जाते कुछ घड़ी कुछ पल में ही वो दूर हो जाता है। और ये सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता, इसलिए युधिष्ठिर महाराज सब काम का छोड़ करके और नारद जी महाराज से आत्म कल्याण करने के लिए आगे अब नया प्रश्न करते हैं। देखो भाई, अब जो कथा चलेगी हमको मालूम है वो कथा आपको ज्यादा रुचिकर मालूम नहीं देगी, सबके लिए नहीं कहता हूं। आप में बहुत से सज्जन, बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको कि ज्ञान की बात, सत्संग की बात बहुत प्यारी लगती है, परंतु जब कथा भाग आता है तो एक अलग ही रस होता है। वो कथा भाग तो विशेष नहीं है, ज्ञान की बहुत चर्चा है इसमें, इसलिए अब इसको है जैसी कम करके निकल जाए तो ऐसा भी मन नहीं करता, क्योंकि ये वासना का स्कंद है ना, तो इसकी बातें सुनने से हमारी वासनाओं में सुधार होता है। गलत वासना है तो उनका शुद्धिकरण होता है, और अच्छी वासनाएं हैं तो उनकी पुष्टि होती है। एक संत ने ये बातें कही है, नारद जी ने ये उपदेश दिया है, युधिष्ठिर जी महाराज सुन रहे हैं, युधिष्ठिर के पास बैठे हुए भगवान सुन रहे हैं भगवान। ये एक ऐसा प्रसंग है कि जिसके श्रोता स्वयं भगवान है, तो जो श्रोता इस कथा को बड़े मनोयोग से सुनेगा वो भगवान के साथ बैठ करके सुनने का लाभ लेगा। इसलिए आलस्य तंद्रा प्रमाद ये सब छोड़ करके आप लोग रुचि पूर्वक इसको सुने, कहीं हमारे कहने में गलती, अरे कहने वाले की तरफ मत देखना, कहने वाला तो जगह जगह गलती करेगा, ऐसी बात को कैसे वो समझा सकता है, समझ सकता है। सुखदेव जी महाराज की वाणी और वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई, हम जैसे लोग क्या इसको समझ सकते हैं। तभी तो आश्चर्य होता है कि आज के युग में जगह जगह जाओ जाओ कि साहब भागवत, जाओ जाओ भागवत भागवत, हल्ला तो इतना होता है, परंतु उस भागवत में लिखा क्या है, भागवत का मूल क्या है, वहां विचार करते हैं बुद्धि डगमगाती है, पता ही नहीं चलता है कि ये प्रसंग क्यों आए यहां। एक एक प्रसंग का एक एक के साथ बड़ा गहरा संबंध होता है। अब जिस भाषा में भागवत है उस भाषा का तो नामो निशान नहीं, ज्ञान ही नहीं, और इतनी भागवतें होती हैं, इतना भागवत का प्रचार है, आया थोड़ा सा मन में आया कि साहब भागवत की पोथी लेकर बैठ गए, अच्छा है, बढ़िया है, सत्शास्त्र का मनन अच्छा है, पर पहले अंदर तो मनन किया जाए, पहले उनको खूब अच्छी तरह से उसको घोटा जाए, पिया जाए, समझा जाए। अब ये भाषा ही इसकी ऐसी है, भागवत की भाषा है ना, है तो संस्कृत में पर बहुत ललित संस्कृत है भागवत की। कभी कभी श्लोकों को बोलते हैं तो आनंद आता है, चाहे हम अर्थ न समझे, सुनने में आनंद आता है, लय में आनंद आता है। जैसे रामायण की लय होती है, चौपाइयों का, दोहों का बोलने की जो राग रागनियां होती है वो एक अच्छी लगती है, ऐसे ही कोई जानकार ये श्लोक बोलता है बहुत अच्छा लगता है। ऐसी ललित संस्कृत है भागवत की, अच्छी संस्कृत, मन में आनंद आए ऐसे। तो भाई ये बहुत ही ऊंचे आनंद की स्थिति वाला ये महापुराण है। हो अब जो प्रसंग चल रहा है इस विषय में थोड़ी विचार करने की जरूरत रहेगी। ये 5 अध्याय थोड़े विशेष जो है ज्ञान के रहेंगे, आपको पहले ही कह देते हैं। आप जो है कस मसाना नहीं, आप ये प्रतीक्षा मत करना कि अब ये प्रसंग में अब दूसरी कोई कथा भाग चले। तो एक हमारी कमजोरी बताते हैं कि जो कथा भाग होता है उसको तो हम बहुत संक्षेप में कहना चाहते हैं, क्योंकि कथा तो सुनी हुई होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोग भगवान की कथा कितनी सुन लो उसमें सरसता ज्यों की त्यों रहती है, बढ़ती रहती है सरसता। सुनी हुई होने पर भी सुनने से सरसता तो बढ़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु विशेष विचार रहता है कि इस कथा में भाव क्या है और सत्संग की बात क्या है इसमें। इसलिए थोड़ा कथा भाग को कहीं हम संक्षेप में भी कह दें तो आप अपनी सरसता बनाए रखना, आप अपने कथा की रुचि बनाए रखना, और जो खास सत्संग की बात है उसको आप जरूर मनोयोग पूर्वक सुनते रहना। अस्तु। युधिष्ठिर महाराज ने बहुत प्रसन्नता के साथ अब वे नारद जी से और प्रश्न किए, पूछा कि महाराज मैं आपसे मनुष्यों के सनातन धर्म के विषय में पूछना चाहता हूं। जिस सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था है, जिस सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था है, जिसमें सबके आचार विचार व्यवहार आदि को बताया गया है, उसके विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप एक ब्रह्मा जी के पुत्र तो है ही, साथ साथ भगवान नारायण के आप पास में विराजमान हैं, और आप जैसे कृपालु पुरुष ऐसी बात बताने के लिए सदा तत्पर रहते भी हैं, और आप इस विषय को गंभीरता से जानते भी हैं, अतः इस विषय का विस्तार से वर्णन करो। नारद जी महाराज कहने लगे कि देखो, मैं नारायण भगवान को प्रणाम करता हूं, और मैंने नारायण भगवान से जो मैंने मनुष्यों के धर्म के विषय में सुना है वो मैं आपके सामने बताता हूं, क्योंकि ये भगवान स्वयं नारायण भगवान दाक्षायणी के यहां उत्पन्न हुए, दक्ष की कन्या थी, मूर्ति उससे ये पैदा हुए, और बद्री नारायण में जाकर इन्होंने निवास किया। उन भगवान को याद करके बताता हूं। कहते हैं पहली बात तो यह कि धर्म बोलते किसको है, धर्म 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 चिल्लाते तो है, हमारी सरकारें भी बोला हम धर्म निरपेक्ष है। अरे पहले ये तो आप सुनो कि धर्म बोलते किसको है। धर्म बोलते हैं या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि ही स धर्म है, जिससे लौकिक और पारलौकिक दोनों जगह जीव का लाभ होता हो, कल्याण होता हो, इस लोक में लाभ मिले, परलोक में उसका कल्याण हो, ऐसा आचार विचार युक्त उपदेश धर्म होता है। और ज्यादा स्पष्ट किया कि वेद स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम् प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद स्मृति सदाचार, महापुरुषों ने जो आचरण किया वो सदाचार, वेदों का अर्थ स्मृतियों में लिखा हुआ है और वेद स्वयं भी बोलते हैं। तीन तो ये चीज होगी, चौथा स्वस्य च प्रियमात्मने, जिसको करने के बाद हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होती हो। चारों चीज एक साथ जिस काम में मिलती हो वो काम धर्म कहलाता है। वो हमारा कार्य, जैसे चोर है, चोर कुशलता पूर्वक चोरी करता है, उसको द्रव्योपलब्धि होती है, वो प्रसन्न तो हो गया, परंतु उसका कार्य वेद सम्मत है क्या? क्या उस कार्य को करने के लिए स्मृतियों ने आदेश दिया है क्या? क्या सत्पुरुष ने उसका आचरण किया है? नहीं किया तो ऐसा नहीं माना जाएगा। जिस काम को करने से हमारे मन में प्रसन्नता हो, सुखी हो, हम शांति मिले, परंतु साथ साथ में सत्पुरुषों ने भी उसका आचरण किया हो, शास्त्रों ने भी हमको कहा और वेद ने भी कहा हो, तब जाकर के वो विधान होता है। इसलिए मनुष्य के लिए 30 लक्षण बताए, सभी मनुष्यों के लिए 63 लक्षणवान धर्म है। वो 30 लक्षणों में क्या बता रहे हैं कि पहली पहली बात है सत्य बोलना, वाणी में सत्यता हो, जैसा देखा जैसा सुना वैसा कहा। लोगों को डर लगता है कि सत्य बोलने, सत्य कैसे कहा जाए, सत्य बोलने में भय लगता हो तो इतने भयभीत होने की जरूरत नहीं, फिर भी भय लगता हो चुप रह सकते हो, चुप रह सकते हो, परंतु असत्य नहीं बोलना चाहिए, असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, दीन दुखी पर दया करनी चाहिए, एक सहिष्णुता होनी चाहिए। कोई हमारा अपमान करे थोड़ा सहो, कठोरता से कहे थोड़ा सहो, सर्दी गर्मी आदि हो तो उनको सहो। देखो ये अंदर की सहिष्णुता एक बाहर की सहिष्णुता, मौसम की सहिष्णुता होती है, तो मौसम की सहिष्णुता को यथाशक्ति सहो, लेकिन अंदर की सहिष्णुता है उसको तो पूरे रूप से सहना चाहिए। सहने का अर्थ ये नहीं है कि किसी ने हमको कटु वचन कह दिए तो हम बोले नहीं, वापिस नहीं बोले, इसका अर्थ ये नहीं है। वापिस नहीं बोले, एक बार नहीं बोले, दो बार नहीं बोले, फिर जो है अकस्मात वो बात फूट पड़ती है, लड़ाई हो जाती है और लोग कहते हैं थोड़ी सी बात पर लड़ लिए। अरे थोड़ी सी बात पर लड़ाई नहीं होती है, आदमी एक दो बार सहन करता है, तीन चार बार सहन करता है, उस समय में उस आदमी के वो शब्द है वो संस्कार रूप से अंदर जमा होते हैं। इसने हमको ये कहा, इसने हमको ये कहा, ये अंदर जमा होते 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 जब वो पूरा हृदय उसके द्वेष से भर जाता है तब थोड़ी सी बात पर टकराहट हो जाती है। लगता तो है थोड़ी सी बात पर, तो जमा कितना होता है। द्रौपदी ने कहा था कि अंधे के बेटे अंधे होते हैं, बात तो बहुत चुभी और उस समय दुर्योधन बोला नहीं, पर उसका बदला लेने के लिए कितने कितने उसने व्यवहार किए। भरी सभा के अंदर फिर द्रौपदी को कहा गया कि अंधे के बेटे जब अंधे ही होते हैं तो द्रौपदी तुम्हारा कपड़ा खींचा जा रहा है तो लाज किस बात की, सब अंधे ही तो बैठे हैं। ये देखो कैसा जहर पकड़ लिया वो, और इन पांडवों का जो क्रोध बढ़ा था वो इनके बर्ताव से हृदय में जमा होते 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 आगे जाकर महाभारत का रूप लिया। तो भाई दिखती तो लड़ाई छोटी सी बात पर है, पर सहिष्णुता के अभाव में एक दूसरे के प्रति जो खराब संस्कार अंदर जमा होते हैं वो अकस्मात फूट जाते हैं, इसका नाम सहिष्णुता नहीं है। हमने संस्कार को जमा कर लिया, सहिष्णुता क्या हुई? तो फिर कहे सहिष्णुता कैसे लाएं? तो देखो कोई यदि कहता है, कोई हमारा अपमान कहता है तो भाई उस बात को हंसी में निकाल दो, हंसी में निकाल दो, विनोद में निकाल दो, और अपने अंदर इस बात को आने मत दो कि इसने मेरा अपमान किया या इसने कुछ ऐसा किया, यही समझो कि मेरे भाग्य में था ऐसा, मैंने कभी अपमान किया उसका फल है, अपने को ये हृदय में स्थान नहीं देना है। ऐसे अंदर से जागरूकता रहेगी, उसके संस्कार नहीं पड़ेंगे। अब बताओ ऐसी ऐसी बातें बताई है, और अहिंसा रखो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का अर्थ भी लोगों ने यही समझ रखा है कि स्त्री पुरुष अलग अलग रहे, ये इतना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य होता है। देखने में सावधान रहो, सुनने में सावधान रहो, चखने में सावधान रहो, हर इंद्रियों में संयमन होता है, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। चाहे जैसा ही बोलेंगे, चाहे जैसा ही देखेंगे, चाहे जैसे ही रहेंगे, और फिर जो है स्त्री पुरुष अलग अलग रहेंगे, उसमें ही ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन हो, ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। और यथा लब्ध संतोष रहना चाहिए, संतोष। कैसी भी परिस्थिति आए, जो हमारे हाथ की बात नहीं है, उसमें हम सिवाय संतोष की और कर भी क्या सकते हैं, बड़ी शांति मिलेगी। मौन रहना चाहिए, एक मौन, चुप रहो। मौन भी कैसा, बाहर से तो हम मौन बहुत रह जाते हैं, पर अंदर से मौन नहीं रहते, अंदर से हमारी बातें चलती रहती है, उसने ऐसा कहा, ऐसा किया, वैसा किया। कई के लोग देखते हैं कि मौन आए तो ये बात हुई, मौन टूटने के बाद पीछे के सब लेट निकालते हैं, वो खूब बोलते हैं, फिर ऐसा नहीं होना। मौन रहे तो मौन रहने में वाणी का भी मौन हो और मन का भी मौन हो, विचार मौन रहे, कई मौन होते हैं, ऐसे सब मौन मौन में आ गए। और आत्मविमर्शनम, अपने आप को सदा देखना चाहिए, मेरी कहां गलती है, मेरे स्वभाव में क्या कमी है। हम लोगों को जो दूसरों के स्वभाव देखने की एक आदत पड़ गई, ये आदत कहां से आई, ये आदत भगवान ने हमको दी हमारे दोष देखने के लिए। अब वो चश्मा हम लगा करके दूसरी तरफ देखने लग गए, अरे मेरी आंख पर जो चश्मा है, इस चश्मे से मैं क्या करूं कि मेरी आंख की ज्योति को मैं देख सकता हूं, मेरी आंख से जो दिख रहा है उससे मैं देखूं, लेकिन ये चश्मा लगाकर मैं दूसरों को देखना चाहूंगा तो ये चश्मा मेरी आंख पर मेरे देखने के लिए, दूसरे के लिए थोड़ा ही है। वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, कई कई आदमियों का स्वभाव है, किसी की भी कमी बतवा लो उनसे, किसी की भी निंदा करवा लो, वो अरे वो कहेगा वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। भाई ये अच्छी बात नहीं है। देखो अपने अंदर देखना चाहिए, आत्मविमर्शन, अपने अंदर ईमानदारी से देखो, ये मेरी भूल है, ये मेरे स्वभाव में बड़ी भारी कमी है। अपने अंदर ही कहने सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को कह रहे हैं तो भाई सरलता से मान लो हम सरल दिखेंगे, अच्छा दिखेंगे लोगों में, कह देंगे, वो कोई फायदा नहीं। हाँ अपने परिवार में कह सकते हो, रात दिन जिनसे जो है काम पड़ता हो उनको कह सकते हो, देखो भाई स्वभाव में मेरे बहुत खराब है, खराबी है, बात पर मुझे क्रोध आ जाता है, आप मुझे क्षमा कर देना, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं कोशिश करूंगा, ये भी बात नहीं कि मेरे स्वभाव को सहन करो आप, ये नहीं है, कोशिश करूंगा, लेकिन आप नाराज मत होना। कभी कोई गलती हो जाए तो अपने से बड़ों के चरणों में जाकर माफी मांगने में संकोच मत करो, क्षमा याचना, गलती हो गई हमसे। और वस्तु आदि का ठीक विभाग करो, अन्नाद्यादे सम विभाग है। हमारे परिवार में वस्तु हो, धन हो, संपत्ति हो, उसका यथोचित विभाग करो। ये मानो कि ये संपत्तियां इनकी, इनके हिस्सेदारी की है। और बताया कि भगवान के विषय में सुनो, भगवान का नाम ले ओ, और भगवान के साथ मित्रता रखो, भगवान की सेवा करो, भगवान के दास बन करके रहो और शरणागत हो जाओ। ये मनुष्य के धर्म है, सब मनुष्य के, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई ईसाई हो और चाहे कोई फारसी हो, यही धर्म है विशेषता से। सब जो है ये सबके लिए उपयोगी चीज है। और फिर बताया कि संस्कार यदावत छिन्ना स द्विजोजो जगादयम। द्विज का अर्थ क्या होता है? जिसका दोबारा जन्म होता है, जिसका दो जन्म होता है वो द्विज होता है। द्विज संस्कृत में द्विज बोलते हैं पक्षियों को और द्विज बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को। पक्षी होता है ना, उसका एक जन्म तो अंडे के रूप में हो गया। अब अंडा बाहर से दिखता है अपने को, देखते हैं अंडा पड़ा है ये, पर उसमें जीवत्व है। जब उसके मुंह पैर हाथ निकलते हैं उसमें से, तब जो है उसका एक जन्म और होता है, तो वो द्विज होता है। और इधर जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य है, ये गुरु गायत्री से दोबारा इनका जन्म माना जाता है। इसलिए बताया है कि जिनको जनेऊ का अधिकार है वे जब तक जनेऊ नहीं लेते हैं तब तक वे शूद्र के समान अपवित्र है, सशूद्रवत बहिष्कार्य है। इसलिए बताया, एक एक की आयु भी बताई कि ब्राह्मण को 12 वर्ष की अवस्था से पहले बालक को जनेऊ दिला दो, जिसमें आषोडशात ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते। 16 वर्ष के बाद तो उसको जनेऊ इतना विलंब करना ही नहीं चाहिए, पहले से ही दे देना चाहिए, 16 वर्ष से पहले दे ही देना चाहिए, जिससे सावित्री नाति वर्तते। सावित्री का अति वर्तन नहीं होता, जनेऊ लेने का दोष पाप नहीं लगता। जनेऊ को केवल लोगों ने एक डोरा मानी है, तो ये डोरा है, ये यूं डोरा नहीं, एक विधि पूर्वक बात होती है ना। जैसे मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो देखते हैं ये तो केवल पत्थर है, ये दिखने वालों को पत्थर दिखता है, भाव से ही तो उसको भगवान दिखते हैं, पहले बताया भी था। ऐसे ये जनेऊ होती है, ये केवल डोरा नहीं होता, इसका एक विधान होता है। उठा लिया बाजार से लिया, किसी ने डाल ली, ऐसे नहीं होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इससे बहुत लाभ होता है, यज्ञोपवीत से बहुत लाभ होता है। डॉक्टरों ने खोज की है, पश्चिमी डॉक्टरों ने, विलायती डॉक्टरों ने, कि हिंदू लोगों की क्रिया में क्या रहस्य है, तो बताया कि ये जो जनेऊ लगाते हैं लघुशंका वगैरह जाने में, ये जनेऊ को यूं करते हैं, उसका कारण क्या है कि यहाँ की नस है, कान की जो नस है ना, उसका जो है मूत्र त्याग में, मल त्याग में एक संबंध बनता है, ये यहाँ से बंद रहे तो जो है इससे ठीक रहता है। आप यदि देखो 5-6 घंटे यहाँ बैठे हो, आपका ये दायां पैर यदि सो गया, ये दायां पैर सो गया तो बाएं कान को आप यूं 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 पकड़ के यूं करो, आपका उसी समय में आपके पैर में से झंझनाहट खत्म हो जाएगी। नहीं तो कई देर उठा नहीं जाए, बैठेंगे करेंगे, ऐसा नहीं, आप थोड़ी देर यूं दो तीन बार यूं कर लो कान को, थोड़ा सा अच्छी तरह से पकड़ करके ये नस दबेगी आपका ये दायां टीक, और बायां पैर सो गया थोड़ा दायां पैर यूं कर लो, दायां कान यूं कर लो, बहुत जल्दी जो है पैर की शून्यता उतरती है। ऐसे बहुत उपाय है। तो ये जो जनेऊ है यज्ञोपवीत है, डोरा नहीं है। देखो यज्ञोपवीत में 3 भाग होते हैं। ये 3 भाग किस बात को बताते हैं कि ओंकार के अंदर त्रिमात्रा रहती है, ए ऊ और मैं, और ये 3 जो जनेऊ है, उस जनेऊ की जो डोरी है, उस पूरी डोरी का माने तिलड़ा डोरी हो गई। अब उसको यूं यदि आप लपेटा दे हो तो कितना 384 होता है, 28 ये जो है 84 इसकी ये गांठ आती है, 84 गांठ, 96 गांठ है, 96 गांठ आती है। क्यों? कि वेद के अंदर 100,000 मंत्र है, उसमें 80,000 तो कर्म कांड के हैं, 16 उपासना कांड के हैं और 4 ज्ञान कांड के हैं। तो जब ये 80 और 16 में हम लोग रहते हैं तब जो है ये जनेऊ का अधिकार है, और जब वो संन्यास ले लेता है ज्ञान कांड में चला जाता है तब वे शिखा और सूत्र का त्याग कर देते हैं। फिर वे सन्यासी महात्मा होते हैं, वो शिखा और सूत्र दोनों का त्याग कर देते हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए जनेऊ लेना जरूरी है। अब आज के जमाने में कह देंगे ये जनेऊ ले लेते तो हम क्यों नहीं लेवे? भाई आपको जरूरत नहीं है, जनेऊ लेना कोई कल्याण में विशेष सहायक होता हो ऐसी बात थोड़ी है। जिनको जनेऊ लेने का अधिकार नहीं दिया है उनके कल्याण में तो कोई बाधा डाली नहीं ना। भाई आप लोग वैदिक कर्म करते हो तो इसलिए आपको जरूरत है, और जो वैदिक कर्म के बिना ही अपना कल्याण कर सकते हैं उनको लिए झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। पर बहकाते हैं आजकल लोग, बहकाते हैं एक दूसरे को। देखो तो ये शास्त्रों के अंदर ऐसा तुमको जो है तुमको ये स्थान नहीं दिया, तुमको वो स्थान नहीं दिया, ऐसे करके आपस में लड़ाते हैं, खुद जानते नहीं और दूसरों को जानने के लिए समझाते नहीं। ब्राह्मण के लिए जो है यज्ञ 6 कर्म होते हैं, यज्ञोपवीत के बाद अध्ययन करना और अध्ययन कराना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 ब्राह्मण के कर्म होते हैं। और वैश्य के और क्षत्रिय के, क्षत्रिय और वैश्य के इनमें से 5 कर्म होते हैं, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, और दान देना। पर दान लेना ये वैश्य नहीं करता, कैसा ही भूखा हो बढ़िया कभी दान लेना नहीं चाहेगा। और जो है क्षत्रिय कभी भी किसी के माथे तो होकर के खाना नहीं चाहेगा, संकट आएगा तो आ जाएगा, बहुत संकट आए पर नहीं, किसी का हक का या किसी का जो है दान लेना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सहजात प्रवृत्ति है। और उसके अलावा सबकी एक अपनी अपनी आजीविका की वृत्ति बताइए, सबकी अलग अलग आजीविका की वृत्ति रहेगी तो समाज में प्रेम बना रहेगा। ब्राह्मण को अलग वृत्ति से उसका निर्वाह हो, क्षत्रिय का अलग वृत्ति से निर्वाह हो, वैश्य का अलग वृत्ति से निर्वाह हो, शूद्र का अलग वृत्ति से निर्वाह हो, ब्राह्मण अपना काम करे। देखो ब्राह्मण की वृत्ति सबसे कठिन बताइए। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में ग्रंथ था इसलिए ब्राह्मण को बहुत ऊंचा बता दिया, ऐसा पक्षपात ऋषि मुनि यदि करते तो इनकी वाणी का आदर नहीं होता। ब्राह्मण की वृत्ति के लिए क्या लिखा है वो? कि ब्राह्मण की वृत्ति है वो शालीन वृत्ति हो, यायावर वृत्ति हो, वार्ता वृत्ति हो, शीलोंचन वृत्ति हो, निर्वाह वृत्ति का मतलब निर्वाह, खेत काटने के बाद जब उस खेत में फसल निकल गई, सब अपने अपने घरों में चले गए, फसल लेकर के बोरियां भर भर करके घरों में ले जा करके अनाज रख दिया, उसके बाद जो बचा हुआ होता है वो ब्राह्मण लेता है। अनाज मंडी में बोरियां बिखरी पड़ी है और जितना बिक गया बच गया सो बच गया, वो कापोती वृत्ति या वो शिलोंचन वृत्ति होती है वो ले हो, या यायावर वृत्ति घर घरों में जाकर के वो मांग के ले आओ, और या फिर वार्ता वृत्ति है कर्मकांड करवाओ, उसके द्वारा जो मिले उससे निर्वाह करो, ये ब्राह्मण की आजीविका के साधन बताए। और जो वैश्य होता है, वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च, वैश्य होता है वो वस्तु को लाए ले जाए इसमें जो उसको लाभ हो जाता है बस वो उसमें अपना निर्वाह कर सकता है। वो भी कितना बताया कि एक सीमित उसके ऊपर लाभ भी लाने में ले जाने में जो खर्चा लगा उसके बाद थोड़ा निर्वाह का अपना खर्चा हो, निर्वाह के लिए जितना मुनाफा ले सकते हैं उतना मुनाफा लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और राज्य आदि करने के बाद प्रजा की रक्षा करे, राज्यो वृत्ति प्रजा गोप्तु, प्रजा की रक्षा करे, उस प्रजा के ऊपर जो टैक्स वगैरह लगाए तो उसके द्वारा अपना निर्वाह हो बस उतना ही होता है, बाकी सब प्रजा की सेवा में लगाए। सबके वृत्तियों में त्याग है, ऐसा उसको रहना चाहिए। ब्राह्मण के लक्षण किए हैं कि ब्राह्मण के अंदर स्वाभाविक ही सम दम तप तितिक्षा आदि ये स्वाभाविक होते हैं। देखो ये ब्राह्मण है ना, ये सुबह पहले सर्दियों के अंदर 3-4 बजे नहाने की बात आएगी, आराम से नहा लेंगे, परंतु धीरे धीरे जो जो जातियों में नीचे थोड़ा दूसरे रूप बनता है उतना जल्दी वो कर नहीं सकते। आज के जमाने की भी बात है, देखो जिद की बात नहीं, स्वाभाविकता की बात है। ब्राह्मण के अंदर दया भाव रहता है, अच्युतात्मत्वम और भगवत बुद्धि रहती है। ऐसे क्षत्रिय के अंदर शौर्य पराक्रम होता है और ब्राह्मणों का भला चिंतन करना चाहता है। वैश्य होता है, उसकी भगवान में, देवता में, गुरुजनों में एक विशेष आदर की वृत्ति रहती है, आस्तिकता रहती है और उसमें क्रियाशीलता रहती है। वैश्य कभी भी निराश होकर के नहीं चलता कि अब हमारे पास पूंजी नहीं, अब हम क्या व्यापार, उसके अंदर नया नया उत्साह पैदा होता है। शूद्र होता है, उसमें विनम्रता रहती है, वो कभी चोरी चपाटी करना अच्छा नहीं मानता और अपने स्वामी के साथ कभी भी कपट करना उसको अच्छा नहीं लगता, सत्य बोलता है, शूद्र के लिए बात आई। और गाय और ब्राह्मण की रक्षा में वो आधी रात के लिए भी सिर कटाने के लिए तैयार रहता है, गाय ब्राह्मण की रक्षा के लिए पहले आगे आता है। ये तो चारों की बात बता दी, अब बताते हैं, अब स्त्रियों के धर्म बताते हैं, क्योंकि पुरुषों के द्वारा जो क्रिया होती है वो अपने ढंग की, स्त्रियों का कुछ अपना अलग ही होता है। माने स्त्रियों की जाति तो अपने अपने पति के अनुसार है ही, पर उनका कर्तव्य कर्म कुछ और विशेष होता है। स्त्रियों का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? स्त्रीणां च पति देवानां तच्छुश्रूषा अनुकूलता। पति को भगवान का रूप स्वरूप समझे और उसकी सेवा का भाव और पति के अनुकूल चले, अनुकूल अपने व्यवहार से पति के मन में लेश मात्र भी कष्ट न हो। स्त्री को चाहिए कि अपने घर को साफ सुथरा रखे और स्वयं भी साफ सुथरी रहे और अपना श्रृंगार करके रहे। पर याद रखना, स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो केवल घर घर में ही होता है, घर के अंदर ही गहना पहनो, घर के अंदर ही श्रृंगार करो, परंतु वो श्रृंगार करके और बाहर जाना ये स्त्री के लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि स्त्री की स्वयं की शोभा ही घर में रहने में है। वहां वो अपना श्रृंगार करेगी तो श्रृंगार में श्रृंगार हो जाएगा, बाहर जाने पर स्त्री का जो श्रृंगार होता है वो श्रृंगार स्त्री की शोभा को घटाने वाला ही होता है। स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के सामने सत्य बात बोले, प्रिय बात बोले और प्रेम से उसको कहे। स्त्री को संतोष धारण करना चाहिए, संतुष्टा हो माने संतोष धारण करना चाहिए। पति की कितनी आमदनी है, पति का कितना धन है, उसमें अपने संतोष पूर्वक अपनी बात कह सकती है, लोलुपता न रहे, धर्म को जानने वाली हो और प्रिय वाणी बोले और सत्यवाणी बोले, अपने पति की सेवा में कहीं भी प्रमाद न आने दे। अब पति का स्वभाव कैसा है कैसा नहीं है उसके लिए नहीं बोलते, स्त्री को क्या लाभ होता है वो देखो साफ बोलते हैं। या पतिम हरि भावेन, जो स्त्री पति को भगवान की दृष्टि से देखती है वो पत्नी अब अगले जन्म में बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होती है। पत्याश्रीरिव मोदते, लक्ष्मी जी जैसे प्रसन्न रहती है ऐसे उसको जो है प्रसन्नता मिलती है, और उसके पति है, पति को भी पत्नी के धर्म के कारण से उसको ऊंचा लोक मिल जाता है। पति को कितना बड़ा जो है आपके अंदर सामर्थ्य है, माताओं बहनों में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं, भाई लोग हैं, ऐसे भाई लोग कहते हैं कि भाई हम लोग तो कोई सत्संग वत्संग में कोई न तो रुचि रखते थे, न हमारी कोई श्रद्धा थी, न कथाओं में श्रद्धा थी, न हम कोई, हम तो बस खाओ पियो और आओ और जाओ यही में थे। हमारी घरवाली ने हमको सत्संग में लगाया। बहुत कम ऐसे जो है पुरुष होंगे या स्त्रियां होंगी, बहुत कम ऐसी स्त्रियां हैं कि जो ये कहेंगे कि हमको घरवालों ने सत्संग, हमारे पति ने सत्संग में लगाया, ऐसे कहने वाले कम होंगे। लेकिन पतियों को सत्संग में लगाने वाली बहुत सी माताएं बहने हुई है। कई तो रो पड़ती है अपने पति का सत्संग में न आना, इधर रो पड़ती हूँ, रोती हैं वो बैठ, क्या करें हमारे पति सत्संग नहीं करते। कितनी अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, भागवत में बातें, गीता में बातें, रामायण में बातें, सत्संग में बातें, हम सुनती हैं हमारा जी कचोटता है, अरे हमारे पति क्यों नहीं बैठते, वो भी बैठते तो ठीक था। ऐसे उनके मन में एक एक वेदना होती है, वो वेदना भगवान सुनते हैं, वो स्त्रियों की वेदना, वो वेदना काम करती है। कभी न कभी वो पति के ऐसी बात लग जाती है कि वो भी फिर सत्संग में आ जाते हैं। और बताया है कि भाई पति है वो जो है स्त्री का भी पूरा ध्यान रखे। स्त्री यदि कोई अपराध करती हो, आजकल तो कभी कभी भाई पुरुष इतने आसुरी वृत्ति पर उतारू हो जाते हैं कि पत्नी पर हाथ उठा लेते हैं, बड़ा भारी पाप है। गाय पर कोई आदमी हाथ उठाए, लात लगाए गाय के, वैसा पाप लगता है पत्नी पर हाथ उठाने का। पत्नी से यदि कोई गलती हुई, ज्यादा से ज्यादा यदि आप दंड दे हो तो आप पत्नी से मौन रहो, पत्नी के हाथ का भोजन मत करो, बस इतना ही कर सकते हो। वो इतना भी दुख कम नहीं होता है पत्नी को, बहुत बड़ी सजा है ये। सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का जी थे, उनकी माता के सामने एक बार उनकी पत्नी कुछ बोल दी तो सेठ जी को पता चला, तो सेठ जी ने उनके हाथ का भोजन नहीं किया। सेठ जी कहते मैं माँ तेरे हाथ का ही भोजन करूंगा। तो माँ रोने लग गई, माँ ने कहा बेटा तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अब वो रोने लग गई, सेठ जी के घर से थी वो, बहुत दुख हुआ उनको। तो फिर सेठ जी की माँ ने कहा मैं तुझे आज्ञा देती हूँ जैदा, तू अपने पत्नी से ही भोजन करेगा, राजी हो जा, क्षमा कर दे उसको। उम्र भर तक फिर कभी भी सेठ जी की इच्छा के विरुद्ध वो कभी कुछ नहीं बोली, और अपने सासू जी के सामने कभी कठोर नहीं बोली कि बोलेंगे कुछ हो जाएगा तो इन ये भोजन नहीं करेंगे हमारे हाथ का। और सासू जी ने भी कभी उनको नहीं कहा, अपनी बहू को बाद में ऐसी बात कही नहीं कि कहेंगे तो जैदा इस पर नाराज हो जाएगा, ये मैं चाहती नहीं हूं, इस पर नाराज हो बिचारी पर, ऐसा मैं चाहती नहीं हूं। तो आपस में प्रेम बना रहा, सासू और बहू का जो प्रेम होता है वो घर में एक बहुत मिठास लाने वाला होता है। सासू को भी समझना चाहिए कि मुझे तो इस बहू से पलट करके ही चलना है, बहू को देखना चाहिए कि मेरे भाग्य में जैसी भी सासू है, मुझे तो सेवा करनी, और मुझे इनसे लेना क्या है, मैं यहाँ सेवा के लिए आई हूँ, मैं कोई यहाँ आदर प्राप्त करने के थोड़ी आई हूँ। देखो जिसके भीतर में जितना त्याग होगा उसके मन में उतनी शांति मिलेगी, त्यागा शांति अनंतरम। सासू की कड़वी बात को सहो, देखो गृहस्थ में कैसे रहे, ये पुस्तक है महाराज जी की। महाराज जी ने तो बहुत पुस्तकें लिखाई जिसमें सबसे ज्यादा बिक्री इस पुस्तक की हुई है, गृहस्थ में कैसे रहे। कई मुसलमानों ने वो पुस्तक पढ़ी है, और मैं कह नहीं सकता हूं वो पत्रिका कौन सी है जिस उसमें उस मुसलमान की टीका टिप्पणी आई इस पुस्तक के ऊपर, गृहस्थ में कैसे रहे इस पुस्तक पर। कहा कि देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, उस मुसलमान ने प्रशंसा की, एक अच्छा लेखक उसने पढ़ा, तो मुसलमानों ने भी वो पुस्तक पढ़ी, अच्छा लगा उनको। कि घर गृहस्थ तो सबके ही होते हैं ना, और सबके घरों में कुछ न कुछ टचर पचर चलती रहती है, उन बातों को हम मनन करने से बहुत लाभ होता है। एक महाराज जी कहानी बताते थे कि एक सात भाइयों का परिवार साथ में ही था, तो सबसे छोटी जो स्त्री आई, बहू आई, उसने देखा कि यहाँ तो देवरानी मेर, जेठानी मेर, सासू मेर, सब मेर आपस में टचर पथर चलती है, मन में एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता नहीं होती है और काम धंधा इनका चलता ठीक है। अब वो छोटी छोटी बहू आई, उसने देखा कि भैया मुझे कैसे रहना है, मैं कैसे इनके साथ में समन्वय पूर्वक रह सकती हूँ। तो उसके माँ बाप ने पहले से ही अच्छी शिक्षा दी थी कि देखो बेटा, तुम्हें अपना परिवार संभालना है, उनके साथ समन्वय रखना है, तुझे कोई भी अपने परिवार की जो है कमी की बात हमको नहीं कहनी है और हमारी कभी कोई प्रशंसा तुमको अपने ससुराल में नहीं करनी है। सबसे पहले प्रेम का कारण यही होता है, अपने पीहर की प्रशंसा स्त्री को अपने ससुराल में नहीं करनी चाहिए और अपने ससुराल की कोई कटती बात हो वो पीहर में नहीं कहनी चाहिए, ऐसी बात है। तो कई शिक्षा दी, करते करते वो जब घर में आई तो वहां देखा कि वो देवरानी जेठानी सब आपस में जो है काम करने में संकोच करती है, परिंडा भरने में संकोच करती है, झाड़ू निकालने में लड़ती है, बर्तन मांजने में लड़ती है। तो उसने खूब सोच विचार करके कहा कि भाई रोटी का काम तो मैं करूंगी, रोटी मैं बनाऊंगी। अब रोटी बनाना सबसे मुख्य काम था, तो वो रोज रोटी के लिए बैठ जाए बनाने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा तू ही तो बनाती है, तू छोटी है, तू कोमल है, देख तो सबका नंबर आएगा। नहीं माँ, भोजन कराने का बड़ा पुण्य होता है, ऐसे करके वो जो है महिमा बताने लगी। तो जो है माँ ने देखा कि अरे ये तो करती है तो भाई ऐसी सारी महिमा तो यही ले लेगी। फिर देवरानियों ने, उसके सब जेठानियों ने मिलकर के विचार किया कि नहीं भाई तू अकेली रोटी नहीं बनाएगी, हम भी बनाएंगे, चलो अच्छी बात है। अब वो रोज पानी भरने लग गई, ऐसे करके सारा काम वो खुद करने लगी। तो उसके प्रति एक तो सबके मन में प्रेम हो गया और सबके मन में करने का उत्साह हो गया, क्योंकि जो आदमी काम के लिए हुक्म नहीं देता और खुद काम करता है उसके पीछे सब आ जाते हैं, और जो हुक्म देता है उसके पीछे कोई नहीं आता, और हुक्म वाली जगह पर भी नहीं थी बिचारी। अब जो है एक बार जो है राजपूत सेठ ने अपने सारे बहुओं के लिए गहने बना के दिए, तो उसने छोटी छोटी बहू ने जो गहना मिला वो गहना ले जा करके अपने बड़ी बड़ी जेठानी को ले जाकर दिया कि जेठानी जी आप रखो ये गहना। कि अरे मेरे को भी मिला है, हम क्यों रखे। नहीं नहीं आपके बच्चे बड़े हैं, मेरे तो अभी बच्चे हुए भी नहीं है और होंगे, बड़े होंगे समय लगेगा, आपके बच्चे बड़े हैं शादी के लायक हो रहे हैं, तो आपके ये गहना काम मेरे क्या काम आएगा, मैं तो नहीं रखती। तो ऐसा करने से सारे परिवार में बहुत प्रेम हो गया। तो त्याग से और सेवा से प्रेम बढ़ता है, इसलिए बताया कि धर्मज्ञा दक्षा संतुष्टा अलोलुपा पत्नी होनी चाहिए। ये तो हो गई घर गृहस्थ की बात। अब कहते हैं कि गृहस्थ से आदमी ब्रह्मचारी में जाता है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता है, तो वहां देखो बच्चों को कैसे रखना चाहिए। अब देखो आजकल बच्चों को खूब बढ़िया कपड़ा पहनाते हैं, बचपन से उनको शौकीन बना देते हैं, बचपन से ही वे बहुत आराम और सुख भोग के अंदर वो पलते हैं, जिससे उनके आगे बड़ी कठिनाई आती है, आगे उनमें फिजूल खर्ची का स्वभाव बनता है। दिन का कुछ पता नहीं भाई, आज यदि खूब पैसा है और ये पैसा सदाई बना रहेगा ये जरूरी थोड़े है। पर इसलिए बच्चों के लिए बताया कि बच्चों को गुरुकुल में निवास रखो और कम से कम उनके पास में कपड़े हो। अब गुरुकुल तो आजकल रहे नहीं, अपने घर में भी बच्चों को रखो तो साधारण कपड़े पहनाओ, उनको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के खर्चीले कपड़े मत पहनाओ। जूतों की जोड़ी, बच्चों की जूते के लिए सुना हमने 100-100 रुपए की जोड़ी आती, 100 रुपए की एक जोड़ी बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है इतना सा पैर है उसे 100 रुपए की जूती आती है। इतना आप यदि शौकीन बना देंगे फिर वो बच्चा आगे क्या करेगा, इसलिए उनको जो है कम खर्चीला स्वभाव बनाओ। बच्चों से पूछो और दूसरी बात है बच्चों की ज्यादा रुचि होती है खाने पीने की, तो बच्चों को पहले से को बेटा तुम्हारे कोई भी खाने के मन में आए तुम हमको बोल दिया करो, तुम बाजार में खाने की आदत मत रखना, तो वो घर में बना दो। लेकिन हमने सुना कि जब रविवार का दिन आता है तो क्या होटल में खाने जाते हैं ताकि होटल में विशेष खाने को आनंद मिलता है, ऐसा सुना हमने, वहां विशेष मिलता है। आज भोजन यहाँ नहीं करेंगे, आज चला के होटल में करेंगे। अब बताओ वो छोटा सा बच्चा अभी से ही आदत पड़ेगी, अब होटल में आप देख लो भाई कैसे आदमी होते हैं, क्या कैसे उनका व्यवहार, क्या खान पान, कैसी पवित्रता, वो तो अब आपसे छिपी हुई नहीं है। तो गुरुकुल के अंदर बच्चों को भेजते थे तो वहां पर वो दूसरे के नियंत्रण में रहते थे। छोटा बच्चा होता है उसमें माँ की ममता बहुत होती है, और जिसमें ज्यादा ममता होती वो वस्तु अपवित्र होती है। माँ बच्चे का बहुत प्यार करती है, उस प्यार में बच्चा जो है अपना स्वभाव खराब कर लेता है। इसलिए बच्चे के लिए बताते थे, पहले गुरुकुल में रहते थे तो गुरुजनों के नियंत्रण में रहते थे, उनके पास ममता नाम की तो चीज होती नहीं, वो तो केवल बच्चे का हित ही करते थे। हित और ममता का भाव ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है, एक साथ चल नहीं सकता है। और गुरुकुल के अंदर जब बच्चे रहते थे तो गुरु सुदृढ़ सौहृद है, अपने गुरुजनों में सुदृढ़ प्रेम होना चाहिए, अध्यापकों के प्रति सुदृढ़ प्रेम होना चाहिए। सुदृढ़ प्रेम क्या, इसका अर्थ क्या, कभी गुरुजी हमको डांट दे बिना गलती के तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आज हमको गुरुजी ने बिना मतलब डांट दिया। यदि कभी कोई गुरुजन प्रताड़ना भी देते हैं, कान भी मरोड़ते हैं, कोई शारीरिक दंड भी देते हैं, तो आजकल तो भाई उनके पेरेंट्स हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो आकर के सीधा ही उपालम देते हैं कि हमारे लड़के को आपने क्यों मारा, कि आपका लड़का पढ़ता नहीं, नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, आपने क्यों मारा, उसकी बेचारे मुश्किल हो जाए। वहां क्या गुरु शिष्य का संबंध टूटता है, और जब तक गुरु शिष्य के संबंध में प्रगाढ़ता नहीं होती है तब तक गुरु का ज्ञान उसके जीवन में चरितार्थ नहीं होता। सीधी बात है, केवल गुरु के बोलने से या ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अगले को कोई समझ में आ जाएगा ऐसी बात नहीं है। शाब्दिक ज्ञान हो सकता है पर वो ज्ञान उसके जीवन में लाभकारी नहीं हो सकता। लाभकारी कब होता है, जब अपने गुरुजनों में आदर होता है। विद्यार्थी पढ़े तो उस समय उनको बहुत कम सामग्रियों से और बहुत कम व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। जहां तक स्त्रियों का प्रसंग है, ब्रह्मचारी को यावद अर्थम व्यवहारित स्त्री सु स्त्री निर्जितेषु च, स्त्रियों से काम पड़े बोलने चालने का तो यावद अर्थम, जितना सा काम हो उतना ही स्त्रियों के बीच में बैठे, ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। वर्जयित प्रमदा गाथम, स्त्रियों की चर्चा भी आपस में नहीं करनी चाहिए, और किसी भी स्त्री के विषय में, अंगों के विषय में, सुंदरता के विषय में या और किसी विषय में कोई चर्चा न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके इंद्रियां ऐसी प्रमथनशील है किस समय में उसको कब क्या धोखा दे देवे पता नहीं चलता है। इसलिए उसको अपने केस संवारने में और अपने शरीर पर उपटन लगाने में, कानों और जो है इत्र वगैरह का प्रयोग करने में और काजल लगाने में, इनमें बहुत सावधानी रखनी, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अपने जो गुरुजनों की स्त्रियां हैं वो भी यदि युवावस्था में है तो भी ब्रह्मचारी को चाहिए कि उनकी वो कोई शारीरिक सेवा न करें। कारण यह है युधिष्ठिर की स्त्री है वो एक अग्नि के समान है, और मनुष्य का घड़ा, मनुष्य का जो मन है वो जो वो घृत के घड़े के समान है। देखो ये उपमा क्यों दी यहाँ कि घड़ा आप सर्दियों में जो है घड़े को घी से भर दो ऊपर से एकदम जो है वो ठसाठस दिखता है, लेकिन अग्नि के पास रखते हैं ना तो अंदर ही अंदर पिघलता है, ऊपर से तो ठीक दिखता है पर अंदर ही अंदर पिघलता है। ऐसे ही स्त्री का प्रभाव अंदर ही अंदर हृदय में बैठता है, तो ऊपर से तो देखो वो दूर रहता ही है लेकिन अंदर वो स्त्री का प्रभाव कहीं न कहीं अंकित हो ही जाएगा, और ऐसा हो जाने के बाद कहीं भी उसका पतन हो सकता है। सुताम अपि रहो जय्याद, सुबह के सत्संग में जैसे बात चली है यही आ गई बात, सुताम अपि रहो जय्याद अन्यदा यावद अर्थकृत। अपने परिवार में भी यदि अपने कोई छोटी बड़ी स्त्रियां हो, चाहे वो बेटी बराबर भी हो, तो भी उनसे अकेले में बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए। जितनी बात करे वो जितना व्यवहार है उतना सलटा दे, उसके बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें एक बड़ी मर्म की बात बताई है। क्या बात है कि कल्पयित्वात्मना यावद, ये बहुत ही मुख्य श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। ये जिनके पास भागवत है वो इसके ऊपर चिन्ह कर सकते हैं, इतना बढ़िया श्लोक है। इसे समाधान होता है कि कल्पयित्वात्मना यावद आभासम इदम ईश्वर है द्वैतम तावन न विरमेत ये तो यस्य विपर्यय है। जब तक मनुष्य के बुद्धि में ये भोग्या है, मैं भोगता हूँ, ये भोगने का और भोग्या का भाव जब तक मिटता नहीं है, एक आत्म तत्व में स्थिति नहीं हो जाती है, आत्म रूप में जब तक सबको नहीं देख लेता है, तब तक इसके लिए विपर्यय माने उल्टा पुल्टा काम होने का बिल्कुल डर रहता ही रहता है। इसलिए द्वैत बुद्धि जब तक समाप्त न हो, कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये सब व्यवहार से ऊपर उठ के एक आत्म तत्व में स्थित रहे, तब तक भाई जो है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कहीं के उल्टा पुल्टा काम हो सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहे। कैसे? एक हितेशी के समान उपदेश दिया है यहाँ। जैसे कोई बड़ा भारी हित भाव जिनमें भरा हुआ हो, ऐसा हित का भाव स्पष्ट और साफ बिना राग लपेट के बात कही है। और भी बताया है कि जो है माला पहनना है और सुगंधी चीज लेना है, अपने शरीर को अलंकृत करना है, ये बिल्कुल त्याग देना चाहिए। अब वो गुरुजी के पास विद्या पढ़ ली, विद्या पढ़ने के बाद वो या तो गृहस्थ आश्रम में जा सकता है या वानप्रस्थ में जा सकता है और या फिर संन्यास ले सकता है। यदि अपने विचारों को अपने भोगों अपने विचारों की शक्ति से भोगों के प्रवृत्ति को रोक नहीं पाता तो न्याय पूर्वक गृहस्थ में प्रवेश करे ताकि अंत में जाकर वो भोगों पर विजय प्राप्त कर ले, इसके लिए गृहस्थ आश्रम में है। और यदि पहले से ही उसके विचार दृढ़ हो गए, आत्मज्ञान हो गया, तो वो सीधा वनवासी या सन्यासी हो सकता है। यदि वो वानप्रस्थ में रहता है तो क्या करे कि वानप्रस्थ में रहे तो वो जो है सूर्य के द्वारा पके हुए फल हो उनका सेवन कर सकता है, कई कच्चे फल होते हैं उनका भी सेवन कर सकता है, और कोई अग्नि से पके हुए उनका भी सेवन कर सकता है। सर्दी गर्मी आदि को उतना ही सहन करना चाहिए जितना ये शरीर मानता हो। और वानप्रस्थी के लिए जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं है कि घर को छोड़ करके जंगल में रहने से ही वानप्रस्थी होता है। नहीं नहीं, वो अपने घर में बैठा हुआ भी 2 महीना 4 महीना 8 महीना 12 महीना 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष इसका एक नियम लेकर के इतने नियम तक मैं वानप्रस्थी होकर के रहूंगा, इस प्रकार से रह सकता है। उस वानप्रस्थी जीवन में उसको हर वक्त आन्विक शिक्षा से विद्यायाम, उसको सत्संग की विद्या में, आत्म कल्याण की विद्या में ही लगे रहना चाहिए। और उसको ये विचार करना चाहिए कि जो हमारा ये कारण आत्मनि अग्नि समारोप्य सन्यस्य अहम ममतात्मताम, अपनी ममता अपनी अहंता इन सब को अपने आत्मा के अंदर लीन कर दे। यदि मेरा स्वरूप है तो आत्मा ही है, और यदि मेरी ममतास्पद कोई चीज है, ध्यान देना, यदि मेरे पास ममतास्पद कुछ है तो आत्मा ही है। ऐसी अहंता ममता आत्मा में रखे, और आकाश आकाश के साथ एक है, ये पहले भी बताया था। ये बहुत जो है गंभीर बात और अच्छी बात, श्रेष्ठ बात है। आप ध्यान करो भगवान का, भगवान का ध्यान नहीं होता साहब, हमारा मन इधर उधर चला जाता, कोई हर्जा नहीं। आप बैठ करके खूब विचार करो कि मेरे शरीर के अंदर जो आकाश है, आकाश माने खाली जगह, वो बाहर के खाली जगह से एक है। मेरे अंदर वायु है, वो बाहर की वायु से एक है। मेरे शरीर के अंदर अग्नि है, गर्मी तो है ही, सबके शरीरों में टेम्परेचर है, 98 डिग्री तो रहती है, तो ये टेम्परेचर, ये जो गर्मी है हमारे शरीर में, ये गर्मी और बाहर की गर्मी बिल्कुल एक है। ऐसे ही बाहर का जल और इस शरीर का जली अंश एक है। अपने शरीर के अंदर की चीजों का ध्यान करें और जो बाहर के कठोरता है, बाहर की पृथ्वी है, उसके साथ ये मेरी हड्डियां एक है, हमारे केश है ये एक है, केश भी इसी में ही आते हैं, एक है ये। अब बताओ, ऐसे अपने शरीर को आपने पांच भूतों के विशाल रूप में एकता की दृष्टि से देख लिया, अब आपका स्थूल शरीर कहां रहा बताओ? बिल्कुल फैस हो गए आप, एकदम ताजे हो गए। हम ये शरीर मैं हूं ये भाव कहां रहा है? शरीर अलग हुआ ही नहीं, शरीर तो इनके साथ है। अब रही मन बुद्धि इंद्रियों की बात है, तो वाचम अग्नौ सब वक्तव्याम इंद्रिय शिल्पम करावपी, जो हमारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को तत्त देवताओं में लीन करो। देखो वाणी है वो अग्नि देवता से अभिव्यक्त होती है, तो वाणी को अग्नि में लीन कर दिया। ऐसे ही पैर है, इनके अंदर विष्णु का निवास है, तो अपने गति सहित उसको विष्णु में निवास कर दिया। हर इंद्रिय को अपने अपने क्रियाओं के साथ में अपने अपने देवता में लीन कर दिया, और फिर उन सबको मन में लीन कर दिया, और मन को चंद्रमा में लीन कर दिया, और फिर क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन कर दिया। अब कहते हैं ये आत्मा कैसा आ गया? कि आत्मा सर्वव्यापक है, कूटस्थे तच्ची महती तद अव्यक्ते अक्षरे चतत, और फिर इति अक्षर तया आत्मानम चिन्मात्रम अवशेषितम, वो आत्मा चिन्मात्र रह गया, ज्ञान मात्र, माने अपना होना और अपने होने को जानना और होने जानने का आनंद, ये सब तीनों एक है। ऐसे करके वहां सबसे अपना पिंड छुड़ाए, ज्ञात्वा द्वयोथ विरमेत दग्ध योनि रिवानल है। जैसे लकड़ी में से आग निकलती है, वो आग निकल करके उस लकड़ी को जलाने के बाद शांत हो जाती है, ऐसे ही अपने शरीर से ये विवेक प्रकट हो, ये आत्म तत्व का ज्ञान प्रकट हो करके इन सब से वो ऊपर उठ जाए, ऐसी बात बताई। और उसके बाद यदि और उसके मन में सामर्थ्य हो तो वो संन्यास आश्रम में चला जाए। अब एक बात है कि संन्यास में भी कई भेद होते हैं, यहां पर विशेष अवधूत कोटि के सन्यासियों की बात की, अवधूत कोटि। एक तो सन्यासी होते हैं आचार्य कोटि के, एक होते हैं अवधूत कोटि के, परमहंस कोटि के। तो आचार्य कोटि के सन्यासी होते हैं उनके लिए अलग विधान है, और अवधूत कोटि के संत होते हैं उनके लिए अलग विधान है। पर अवधूत कोटि का यहां वर्णन चल रहा है, क्या अकेला रहे, बिल्कुल किसी से कोई लेना देना न रहे, अपने अंदर भगवान की पूर्ण शरणागति और भगवान का विश्वास अपने अंदर रखे। आत्मानंद से परम ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये, कार्य कारणात्मक जगत में सब जगह आत्मा का या परमात्मा का निवास है, इस बात को खूब समझे। और जागृत और स्वप्न की संधि में हमारे स्वरूप का स्थान है, एक क्रिया ध्यान देना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भागवत में केवल यही आया है बात, एक जगह और थोड़ी सी आई है पर यहां विस्तार से यही आई है कि जो है दो क्रियाओं के बीच में जो एक अवकाश होता है जिसके बिना दूसरी क्रिया हो नहीं सकती, वहां अपना स्वरूप का दर्शन करें। जैसे ये मेरा हाथ है, यू हिलाया यू हिला, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, उसके बीच में एक बहुत सूक्ष्म स्पेस रहा है, उस स्पेस के बिना ये इधर नहीं हो सकता और इधर नहीं हो सकता। यू जैसे झूला होता है, वो झूला झूलते हैं, यू झूलते झूलते एक क्षण ऐसा आता है एकदम सीधा होता है, उसमें एक सूत का सो हिस्सा भी जो है उसमें फर्क नहीं पड़ता, एकदम सीध में आता है। जब झूला यूं झूलता है तो भाई उस समय एक क्षण उसके लिए बिल्कुल सीधा आता है, वो ऐसे ही एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो बीच में आत्मा का स्वरूप आदमी समझ सकता है। आत्मनो गतिम अगतिम आत्मदृक, और बंधन को और मोक्ष को बराबर देखता रहे, इस संसार को माया मात्र समझे, न वस्तुतः इसको सच्चा न समझे। जितना हम संसार को सच्चा समझेंगे उतना ही संसार हमको प्रभावी करता चला जाएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं कभी कोई अनुकूलता है ना अभिनंदे, राजी मत हो उसका, हाँ हाँ बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो गया, खूब कमाई हो गई, खूब हमारा आदर हो गया, खूब समय को राजी हो गए, भर गए चित्त में, भाई दुख पाना पड़ेगा। और यदि कभी कोई जो है प्रतिकूलता आ गई उसके लिए भी नहीं, यहाँ तक लिखा है कि न तो तुम जीने का आनंद मनाओ न मृत्यु के लिए कोई भयभीत हो। शास्त्रों में ज्यादा अभ्यास मत करो, ज्यादा वाद विवाद मत करो, किसी के भी पक्ष का विरोध या समर्थन मत करो, चेला चेली मत बनाओ, ज्यादा व्याख्यान आदि के चक्कर में मत पड़ो, आश्रम आदि मत बनाओ, ये सब अवधूत कोटि के महात्मा के लिए है। परंतु निर्मम निष्काम निरहंकार होना तो सबके लिए है, चाहे किसी कोटि का ही कोई सन्यासी हो, सबके लिए है। कहते हैं एक बार की बात है कि प्रहलाद जी महाराज एक बार कावेरी नदी के किनारे गए थे घूमने के लिए अपने मंत्रियों के साथ। वहां पर एक विशाल शिला थी, पत्थर की वृक्ष था, उसके नीचे शिला, उस पर एक बाबा जी लेटे हुए थे, बड़े मस्त बाबा जी। देखो संतों की मस्ती है ना, संतों की मस्ती दो जगह दिखती है, एक तो चेहरे पर दिखती है और एक चाल में दिखती है। चेहरा और चाल उनका बड़ी मस्ती का होता है। तो हमारे वो जो अवधूत कोटि के महापुरुष थे वो दत्तात्रेय जी थे, उनको देखा प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने देख करके देखा, विचार किया कि हम भी कई दिन से यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, ये बाबा भी यहीं पर कई दिनों से पड़ाव डाले हुए हैं, बाबा तो बाबा ही है भाई, न तो इसके पास कोई सती सेवक आते न कभी भोजन करते देखा गया, हे बाबा बड़ा हृष्ट पुष्ट है। तो ये प्रहलाद जी महाराज गए, उनके चरणों में प्रणाम किया और बहुत नम्रता से पूछा कि महाराज मैं यहाँ आपके पास, वहां दूर पड़ाव मेरा है और कई दिनों से आपको देख रहा हूँ, आपको कभी खाते पीते नहीं देखा, पर चेहरे पर आपकी कोई उदासी नहीं है, बड़े मस्त मलंगे आप, आंखों में देखो कैसा तेज है, कैसा आपके प्रेम है, जैसे कोई खूब खाने वाले लोग होते हो ऐसा आपका शरीर है। तो इतने आप मस्ती में बैठे हुए हो, इतने आप आनंद में रहते हो, जबकि आपके खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है, महाराज ये क्या कारण है इसका। तब वो बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए दत्तात्रेय जी महाराज कहने लगे कि प्रहलाद जी आपने भगवान की भक्ति की है ना, इस कारण से मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ, नहीं तो मैं तो दुनिया से बात करना भी जो है उचित नहीं समझता, क्या बात करूं। कबीरो जायो पूरब लो, मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली सो लखे जो धर पूरब लो होई, दुनिया से क्या बात करूं, मैं पूर्वी देश में रहने वाला, मेरी बोली दुनिया जानती नहीं और दुनिया की बोली मैं समझता हूं, मेरी बोली ये समझते नहीं, मैं सब समझता हूं दुनिया की बोली, क्या कहूं किससे बात करूं। तुम भगवान के भक्त हो भाई, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति का स्वरूप विद्यमान है, इसलिए तुम्हारा हृदय भगवान के प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित हुआ हुआ है, तुमसे बात करने का मन करता, हर किसी से क्या बात करें। तो सुनो देखो प्रहलाद, मैं एक अपनी बात बताता हूँ, मेरी जीवनी बताता हूँ। अब देखो जीवनी के नाम से क्या करते हैं अपने कि साहब कहाँ जन्मे, कहाँ मरे, कैसे हुआ, ये जीवनी नहीं है। संतों की जीवनी कुछ और ही होती है। एक संत थे, उनके पास में कोई गए कि महाराज आपकी जीवनी लिखाओ, उन्होंने कहा कि मेरी जीवनी लिखना चाहते हो, लिख लो दुखों का प्रभाव, बस दुख का प्रभाव, ये मेरी जीवनी, पूरा जीवन आ गया इसमें, जीवन में बहुत दुख आए पर उनका प्रभाव है, दुख का एक अलग प्रभाव। माने दुख से मुझे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, मैंने दुख का यही सदुपयोग किया है, ये मेरी जीवनी है। ऐसे ऐसे संत है भाई, संतों की गति रामदास, जग से लखी नहीं जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था है। हमारे बीच में संत रहते हैं, हमसे बोलते हैं, चालते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते तो वैसे ही है, परंतु भीतर में कैसे क्या है उनकी गति को कोई जान नहीं सकता है। वो कहते हैं कि देखो मेरा जीवन बताऊं, हे प्रहलाद, कभी पूरी न होने वाली इन कामनाओं की वशीभूत होकर मैंने एक नहीं अनेक अनेक शरीर धारण किए थे। बहुत दुख पाया इस कामना के पीछे। कोई भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि उनकी कृपा से अपने कर्मों के जाल में फंसता 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 मैं यहां आ गया मानव शरीर में। और भी प्राणी यहां आते रहते हैं। मुझे बड़ा विचार आता है कि यहां मानव सुख के जितने साधन जुटाता है वही दुख पा लेता है। स्त्री को प्राप्त करता है दुख पाता है, मकान को बनाता है दुख पाता है। सुखाय अन्यापनुत्तये, सुख की प्राप्ति के लिए और अन्य माने दुख को दूर करने के लिए वो साधन जुटाता है, परंतु उसका फल उसको उल्टा मिलता है। इसलिए निवृत्तोस्मि विपर्ययम्, उल्टा फल देखकर मुझे तो संसार से एक वैराग्य हो गया, घृणा सी हो गई। अरे जिसको मैंने सुख के लिए अपनाया उसी ने मुझे दुख दे दिया। फिर मैं ज्यों ही उल्टा हुआ तो भाई मुझे दिखाई दिया, अरे सुख तो मेरा अपना स्वरूप है। एक बाबा जी थे, वो तालाब के किनारे गए स्नान करने के लिए, तो एक आदमी तालाब में कूदे फिर बाहर आए, कूदे बाहर आए। बाबा जी ने देखा कोई बच्चा है बेचारा नहाने धोने का करता होगा, बाबा जी चले गए। बाबा जी त्रिकाल संध्या करते थे, दोपहर में फिर आए स्नान करने के लिए। अब की बार स्नान करने आए तो फिर उसको वैसे ही कूदते फांदते देखा, अंदर गया फिर बाहर आया, तो देखा कि भी क्या बात है ये, चलो अपने वो क्या है बच्चे होंगे। शाम को फिर आए बाबा जी नहाने के लिए, उसको वैसे ही कूदते देखा। बाबा जी ने पर मैं आज तीन बार आया, तीनों बार तू मुझे यहां मिला, तू घर भी नहीं गया, तूने भोजन भी नहीं किया, तेरे परिवार वाले तेरे माँ बाप तेरी प्रतीक्षा करते हुए तू गया नहीं, बात क्या है? और तेरे चेहरे पर कुछ यूं जो है प्रसन्नता नहीं है, तू कुछ तू अन्य मनस्का सा हुआ है, बात क्या है तेरे? तो कहा महाराज देखो मैं जब तालाब के बाहर आता हूं तो ये देखो ये सोने का कंठा हीरे का कंठा मुझे यहां से दिखता है, देखो कैसा दिख रहा है कि नहीं बताओ? ये देखो ये दिख रहा है। और जब मैं इस हीरे के कंठे को देखकर मैं कूदता हूं वहां उस सीध पर, वहां जाकर के हाथ से देखता हूं सिवाय कादे के मुझे कुछ नहीं मिलता। यदि यहां हीरे का कंठा न हो तो मुझे दिखता क्यों है? और यदि वो यहां है तो मुझे मिलता क्यों नहीं है? मुझे कादा कीचड़ क्यों मिलता है? इस अधेड़ पुन में साहब सुबह से देर शाम का समय निकल गया, क्या करूं? बाबा जी ने कहा कि बात तो तेरी ठीक है, अरे तो इधर मत देख, थोड़ा सा यूं करके देख, उल्टा यूं देखा, देख रहे ये रहा देख तेरे हीरे का कंठा। इस हीरे की कंठे की परछाई पड़ रही थी पानी में, उस परछाई को तू सच्चा मान रहा है, मिला तुझे कादा कीचड़। तुझे एक बार भी समझ लेना चाहिए कि यहां होता तो मुझे मिलता, अब उल्टा होकर के देखी हूं, उल्टा हो जाएगा तो वृक्ष के ऊपर ही वो कंठा किसी का भूल कोई भूल गए रह गया तो डागर के ले लिया महाराज, तो एक मिनट में मिल गया। हमारे दत्तात्रेय जी कहते हैं सुखम अस्य आत्मनो रूपम, अरे सुख है आनंद है।